प्रभु प्यार में आत्मा मगन हो जाए तो क्या होता है? मगन हो गई आत्माएं, परमात्मा प्रेम ऐसा है यदि वो हृदय में आ जाए तो वैराग स्वतः ही हो जाएगा, सारी अपवित्रता स्वतः ही विलीन हो जाएगी, सारी अशुद्धियां स्वतः ही निकल जाएगी, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, परंतु यह ईश्वरीय प्रेम, यह ईश्वरीय स्नेह इतना सस्ता भी नहीं है। यह है त्याग है उसके पीछे, तपस्या है। हमारे पास अभी और कुछ समय है, इस समय में कुछ सेवा की और कुछ पुरुषार्थ की बातें करेंगे। एक घटना हमको याद आ रही है, उन तीन श्रमिक जो कि काम कर रहे थे एक जगह। एक विदेशी आकर पहले श्रमिक से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, लेबर से पूछता है, उस काम करने वाले व्यक्ति से पूछता है तुम क्या कर रहे हो, तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, हार्ड स्टोन, बहुत कठोर पत्थर। उसके चेहरे से लग रहा था बहुत उदास है, बहुत दुखी है, क्योंकि पत्थर तोड़ रहा है, धूप इतनी तेज है उसमें ये पत्थर तोड़ रहा है, चेहरे से उदासी झलक रही थी और कह रहा था इतना पत्थर तोड़ने के बाद भी कुछ नहीं होता। वो विदेशी दूसरे श्रमिक के पास गया और उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो, वो कहता है देख नहीं रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी आजीविका के लिए कमाई कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, अगर ये नहीं करूंगा तो घर वाले बीवी बच्चे मर जाएंगे, मैं काम कर रहा हूं। ये दूसरा उत्तर था। वो विदेशी तीसरे व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है तुम क्या कर रहे हो, जो कि खुशी से झूम रहा है और नाच रहा है और जिसके चेहरे पर हंसी है, वो कहता है मैं भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूं, काम एक ही है परंतु अंतर किसमें है, किसमें अंतर है, विचारों में और किसमें अंतर है, भावना में अंतर है, भाव में अंतर है, एटीट्यूड में अंतर है, काम एक ही है परंतु तीनों ही अलग अलग भाव से कर रहे हैं। पहला कितना दुखी है, जीवन ने इतना दुखी बना दिया है, वो तो ये भी नहीं कह रहा है कि मैं कमाई कर रहा हूं, उदास है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, उस अवस्था में वो कार्य कर रहा है। दूसरा बहुत दुखी है, एक रीति से अलग रीति से उसे कमाई करनी है, परंतु इच्छाएं बहुत है कि धन मिल जाए, कुछ और मिल जाए, और कमाई न करूं तो सब भूखे प्यासे मरेंगे। तीसरा भी वही कार्य कर रहा है, परंतु उसके मन में क्या है, उसके मन में ये नहीं है कि पत्थर बहुत कठोर है या नरम है, सख्त है, क्या है, उसके मन में ये भी नहीं है कि मैं कमाई कर रहा हूं, आजीविका के लिए ये कार्य कर रहा हूं, उसके मन में है मैं प्रभु का घर बना रहा हूं। जो भी सेवाएं हम करते हैं, स्वयं को देखना है, इन तीन में से मैं कौन हूं, खाना बना रहे हैं मैं कौन हूं तीनों में से, झाड़ू लगा रहे हैं इन तीन में से मैं कौन हूं, कोर्स करा रहे हैं इन तीन में से मैं कौन हूं, कोर्स करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, कराना पड़ता है, यहां रहना है तो कराना पड़ेगा। क्यों प्रदर्शनी समझा रहे हैं? क्योंकि कहा गया है समझाओ, इसके लिए समझा रहे हैं। काम बहुत कठिन है। भाव क्या है, भावना क्या है, किस भावना से हम वो कर रहे हैं? हर कर्म ऐसा हो कि जैसे वो परमात्मा कार्य है, प्रभु का घर है ये प्रभु परिवार है। इस घर का जो भी कार्य है, क्या समझना है उसे? अपना कार्य समझना है। ये साधारण घर नहीं है, इसे साधारण समझने की गलती नहीं करना। ये कोई मनुष्य नहीं चला रहा है, इसे चलाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। इस घर का जो भी कार्य है, इस घर से जो भी सेवा कार्य दिया जाए, उसे क्या समझना है? प्रभु का कार्य समझना है। हमारी अवस्था उसी तीसरे श्रमिक जैसी हो कि जो झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, खुशी ही खुशी है, दुख का नाम नहीं। ऐसा होगा तब जब हम धारणाओं में भी उतने पक्के हैं, किस सेवा में भी हमारी स्थिति ऊंची है। यदि जिनकी धारणाएं कमजोर हो, चाहे अमृत वेला, चाहे मुरली, चाहे खानपान, चाहे नुमा शाम का योग, कई लोग तो भूल ही गए कि नुमा शाम का योग भी कोई चीज है। सेवाओं के जंगल में ऐसे खो गए हैं कि पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है। शाम का योग और इस यज्ञ की जो भी नियम और जो भी नियम और मर्यादाएं हैं, उनका बार बार रिवीजन करते रहना। मर्यादाएं क्या है, नियम क्या है, धारणाएं कौन कौन सी है, चाहे नए या पुराने, कोई भी हो, सभी के लिए। क्योंकि यदि हम कहते हैं कि हमारा भगवान से प्यार है, केवल कहने से नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा। और सबसे पहले सबूत है कि भगवान से यदि प्यार है तो उसकी मुरली से भी प्यार होना चाहिए। क्या उतना प्यार है? सुबह जो चार बातें सुनाई चिंतन की, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, चार चीजें हैं। आज से ही वो आरंभ करनी है। अगर कोई कहे मेरा भगवान से बहुत प्यार है पर मुरली पर चिंतन मनन अध्ययन पठन पाठन नहीं करते, अध्ययन में रुचि नहीं है। अगर हम आपकी दिनचर्या देखें, हमारा जो दिनचर्या लिखी है ब्राह्मण जीवन की, छोटी छोटी डायरियों के पीछे लिखी रहती है, चार बजे उठना, इतने से इतने बजे ये, उसमें एक शब्द आता है स्वाध्याय। पढ़ा है सबने? है डायरी में? देख लो अभी जिसके पास डायरी है, एक शब्द है उसमें स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी। एक है यहां पर स्टडी, सुनना लिखना एक ये, एक होता है स्वाध्याय, संस्कृत शब्द है स्वाध्याय, अध्ययन करना। जब तक अध्ययन नहीं करेंगे आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेंगी। परमात्मा प्रेम जो है उसको आप पोषण अगर करना है वो पढ़ाई से, नहीं तो ये परमात्मा प्रेम की जो ज्योति जगी है वो बुझ जाती है। आंधी और तूफान बहुत ज्यादा है, केवल संसार में ही नहीं यहां पर भी, केवल लौकिक में नहीं अलौकिक में भी। वास्तव में ये अलौकिक परिवार भी एग्जामिनेशन हॉल है, एक एक आत्मा पेपर, एक एक आत्मा पेपर। कब कौन सा रूप धारण करके हमारे सामने आ जाए पता नहीं, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी काम, कभी लोभ, कभी अहंकार, कोई भी रूप, कोई भी आत्मा कभी भी किसी वक्त धारण कर लेती है। ये भी एक एग्जामिनेशन हॉल है। तो परमात्मा के प्रेम को यदि बढ़ाना है तो उसकी मुरली का ध्यान, उसके परिवार से प्यार, मधुबन से प्यार और यज्ञ से प्यार, चार चीजें आती हैं। बाबा से प्यार अर्थात मुरली से, बाबा से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार। कई ऐसे सारे भाई बहने हैं जो कई सालों तक मधुबन जाते ही नहीं हैं। यहां ऐसे जो पिछले 5 साल में एक बार भी मधुबन नहीं गए होंगे, होंगे। चलो हार्ट उठाने की जरूरत नहीं, पर होंगे। बाबा से प्यार अर्थात बाबा के मधुबन से प्यार, मधुबन से प्यार अर्थात मधुबन निवासियों से भी प्यार, तो मधुबन की उस पावन भूमि से भी प्यार। वहां जाकर मधुबन के प्रति या मधुबन निवासियों के प्रति हम अपनी भावनाओं को कभी भी कम मत होने देना। दोष हो सकते हैं, व्यक्ति में दोष हो सकते हैं, सिद्धांत प्रिंसिपल्स में नहीं, स्थान में नहीं। मधुबन के प्रति प्यार, इस परिवार के प्रति प्यार, ये जो परिवार है यहाँ पर आकर मिले हैं सभी, इन सब से प्यार। चाहे किसी में कितने भी अवगुण हो, पर ऐसी तीन बातें हैं जो सब में हैं। एक तो भगवान को जाना है, क्या ये कम बात है? शंकराचार्य को पूछ के आओ, उसने भगवान को देखा है या नहीं देखा है? संसार में बड़े बड़े योगी, तपस्वी, महात्मा, वैज्ञानिक कितने सारे लोग, परंतु जो बाबा का बच्चा बनता है उसने भगवान को जाना, यही सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा, पवित्रता को धारण किया है। संसार में जाके देखो किस तरह का वातावरण, विकार ही विकार है। कोई भी टीवी चैनल खोलो, कोई भी मैगजीन लो, कोई भी उपन्यास, कोई भी किताब, कोई भी होटल, काम वासना छाई हुई है सब जगह, हवाओं में विकार है चारों ओर। इस वातावरण में, इस मलिन वातावरण में अगर कोई आत्मा भगवान को जान ले, अगर कोई आत्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ले, हो सकता है उसमें बाकी अवगुण बहुत है, हो सकता है उसका जिद्दी स्वभाव है, हो सकता है क्रोध ब्रोध करता है, सब कुछ है, पर फिर भी उसने भगवान को जाना, पवित्र जीवन जी रहा है। उस विकार के गर्त में तो नहीं गिरा है जहां ये संसार के लोग गिरे हैं, उस वासनाओं की चक्की में जो पिस रहे हैं संसार के लोग, उससे तो बाहर है। क्या ये महानता नहीं? और तीसरा, अपना जीवन अर्पित किया है भगवान, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे तन मन या धन, किसी भी रूप से। इसके लिए इस परिवार से प्यार, और चौथा यज्ञ से प्यार। अगर ये चार चीजों से प्यार नहीं है, अर्थात भगवान से प्यार नहीं है, झूठ है, सुबह की बात, धोखे वाली वाली। यज्ञ से प्यार अर्थात एक तो कहा परिवार, अब बात कर रहे हैं यज्ञ। इस यज्ञ से प्यार अर्थात यज्ञ के, यज्ञ की हर वस्तु से प्यार। कितनी अच्छी पॉइंट है, कोई भी चीज वेस्ट ना हो जाए। कल की मुरली, बाबा हमेशा चार चीजें कहते हैं कि सफलता तो हो, पर ये चार चीजें कम से कम, मेहनत कम, खर्च कम, समय कम, और कल की मुरली में एक एडिशन था, शक्तियां भी कम और सफलता ज्यादा। इसकी लिए बाप दादा सौगात देते, फिर वो दूसरी बात की महोत्सव। तो हर वस्तु, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, चाहे पानी, चाहे कोई भी चीज, यहां की कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और उसके निमित्त हम न बने, कोई भी चीज वेस्ट होनी चाहिए। हर वस्तु से प्यार अर्थात यज्ञ से प्यार। और यज्ञ से प्यार अर्थात बाबा से प्यार का ही तो चलता है। बाबा से प्यार अर्थात यज्ञ से प्यार, यज्ञ से प्यार अर्थात क्या, सेवा से प्यार, यज्ञ से प्यार अर्थात यज्ञ सेवा से प्यार। चलो ये भी है, और वो परिवार में आ गया, यज्ञ निवासी परिवार में आ गया, और भोजन से प्यार, पर थोड़ा कम ही रखना, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना इस प्यार का। चलो वो भी है, मतलब भोजन को भी वेस्ट नहीं करना, जितना चाहिए उतना ही थाली में लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत नई चीज अगर कोई बनी है, हमने कभी खाई नहीं है, पर डर के मारे कि कहीं खत्म ना हो जाए, बहुत डाल दिया और खाने के बाद पता चला ये तो ठीक नहीं लग रही है, और फिर फेंक दिया। ये यज्ञ से प्यार हुआ। यहाँ का एक एक दाना क्या है, मुहर के समान है। 87 की एक मुरली है, ब्रह्मा भोजन का महत्व जिसमें बाबा ने बताया, अक्टूबर मास। यहाँ का एक एक दाना मोहर के जैसा है, भोजन को वेस्ट नहीं करना, लाइट को वेस्ट नहीं करना, फैन को ऐसे ही चालू नहीं रखना। कम से कम समय में सेवा में सफलता कैसे हो, उसकी प्लानिंग। कम से कम खर्च में सेवा में सफलता कैसे, ऐसी सेवा का क्या अर्थ कि जो लाखों खर्च कर दिए, टकराव भी हुआ आपस में बहुतों का, और बाद में कोई एक निकला, वो भी 6 मास के बाद छुमंतर। बहुत सेवाओं के पीछे, सेवा तो करनी है परंतु स्थिति के ऊपर भी ध्यान रखना है। सेवा तो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, परंतु उसका आधार भी तो कुछ है। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, कितनी भी सेवा करो, कितने भी भाग दौड़ करो, परंतु यदि निमित्त भाव, निर्माण चित्त और निर्मल वाणी नहीं है तो केवल 5% जमा होगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ये तीन चीजें यदि सेवाओं में नहीं है, ओनली 5%। हम सोच रहे हैं हमारा बहुत जमा है, एक दूसरी अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारा जितना जमा है उतना बाप के खाते में जमा नहीं है, क्योंकि तुम यही देख रहे हो कि हमने ये सेवाएं की, तुम ये नहीं देख रहे हो कि तुमने ये भी कहा कि ये मैंने किया, वो मैं भी तो वहां आ गया था। सेवाएं किसकी है, उसकी, और हम क्या कह रहे हैं। दिल्ली में मंदिर है बिरला मंदिर, हंसी में कहते हैं बिरला, जब बिरला ने जब शरीर छोड़ा तो बाबा भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने कहा क्या किया तुमने, उसने कहा देखो मंदिर बनाया। भगवान ने पूछा किसका मंदिर बनाया, उसने कहा लक्ष्मी नारायण का मंदिर। भगवान ने पूछा नाम किसका दिया, बिरला मंदिर, बिरला मंदिर। पुण्य तो यही पूरे हो गए, जो भी आके क्या देखता है, बिरला मंदिर, बिरला मंदिर, बिरला मंदिर। सेवाएं ऐसी करना उसमें निमित्त भाव हो, वो करा रहा है। हम कौन है कुछ करने वाले, अगर वो चाहे तो हम कुछ भी नहीं है। जब भीष्म भाई कहते थे ये उसकी ही दया कृपा और आशीर्वाद है, शिव बाबा आपको साष्टांग दंडवत, अगर आप ना होते, आप नहीं होते तो मैं ये सब क्या सेवा कर पाता, कुछ भी, हमने कुछ किया ही नहीं। कृष्ण के जाने के बाद पांडवों का क्या हाल हुआ, दिखाया है ना, अर्जुन इतना शक्तिशाली धुरंधर, वो भीलों के हाथ से पराजित हुआ, युधिष्ठिर जिसका इतना सत्य का बल था वो क्षीण होने लगा, कितनी उसकी निशानियां दिखाई, तब उन्हें पता चला कि ये जो हम जीते हम खुद नहीं जीते, ये जो अहंकार था अर्जुन का और इस सब का, वो था हमारे पास, तब हम जीत पाए। वो अगर हट जाए, आज हम सब यहाँ जो बैठे हैं और बाबा की भट्टी, ये जो योग भट्टी चल रही है और आप जो ये सुन भी रहे हैं, ये भी क्यों, क्या ये उसकी ही कृपा दया अनुकंपा नहीं है। अगर उसकी दया ना हो तो हम यहाँ पहुंचते, कई सारे कारण आ जाते है। शब्द भक्ति का, परंतु वास्तव में वही सब कुछ कर रहा है। दादी को कभी हमने प्रकाश में दादी को कभी कहते हुए नहीं देखा कि मैंने ये किया। थर्ड पर्सन में बात करती थी दादी, दादी को संकल्प है, एक संदेश है जिसमें गुलजार दादी के द्वारा वो संदेश बाबा का आया है, जिसमें बाबा ने सूक्ष्म वतन में गुलजार दादी को और प्रकाशमणि दादी को इमर्ज किया और बाबा प्रकाशमणि दादी से कह रहे हैं संदेश में वतन में गुलजार दादी के द्वारा गुलजार दादी का सुनाया हुआ संदेश है। बाबा दादी से कह रहे हैं कि दादी आपने इतनी सेवाएं की। दादी ने एक ही शब्द कहा, बाबा मैं नहीं आप। हमने कुछ भी नहीं किया, आपने किया। सेवाएं हो परंतु वो मैंने किया, मैं ऐसा करता हूं। हमने इतनी सेवा की, सबको पता रहना चाहिए हमने इतनी सेवा की। बहन जी हमारा यहां बैठकर नाम ले कि इस माता ने और इस भाई ने ये सेवा की। अगर नहीं लिया तो उदास दुखी। क्या हम जो सेवा कर रहे हैं वो जमा नहीं हो रही अपने आप? क्या किसी की स्तुति प्रशंसा के लिए हम सेवा कर रहे हैं? निष्काम भाव, निमित्त भाव, सेवा कर दी और बोल गए, ऐसी सेवा हो तो यज्ञ सेवा। और एक महत्वपूर्ण बात यज्ञ सेवा में आती है, यदि इस यज्ञ की कोई भी आत्मा इस संगठन को, इस परिवार को छोड़कर जाती है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? हमारी। शायद हमने ही कुछ ऐसा किया हो, शायद हमें ही उसने देखा हो, हमारे ही मुख से ऐसे कुवचन अपशब्द निकले हो जिसे सुनकर, हमारा ही ऐसा कोई व्यवहार हो जिसे देखकर वो आत्मा यहां से गई है। बाबा ने कहा ये यज्ञ का किला है, किलेबंदी कर दो, फोर्टिफिकेशन, इस दुर्ग से, इस किले से कोई भी निकलने ना पाए। ऐसे हमारे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो। यदि कोई जा रहा है तो शायद हमारे ही कोई व्यर्थ संकल्प है, निगेटिव संकल्प है, अपवित्र संकल्प है, जिसने उसको प्रेरित किया है यहां से जाने के लिए। और जो गए हैं उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य है उन तक पहुंचना और उनको वापस इस यज्ञ में ले आना। जो यहां से गए हैं उनको रोज अमृत वेला इमर्ज करना और फिर से आह्वान करना, आ जाओ। अगर हमारी वजह से गए हैं तो रोज उनसे माफी मांगना अमृत वेले, ये हमारा कर्तव्य है। ये ईश्वरीय यज्ञ है, परमात्मा यज्ञ है। और एक कर्तव्य है कि इसी यज्ञ के अंदर हमको रहना है, क्योंकि इस संगठन के अंदर विकर्म नहीं होंगे। विकर्म इस संगठन से बाहर जाते ही विकर्म चालू। इसलिए यहां की कोई आत्मा जा नहीं पाए। बाबा ने एक वरदान में कहा था इलेक्ट्रिक करंट लगा दो इस यज्ञ में, अगर कोई जाए भी तो उसको शॉक लगे और वापस अंदर। ऐसा योग का इलेक्ट्रिक करंट, ऐसी हमारी शक्तिशाली स्थिति हो। कम से कम हम तो निमित्त ना बने कि हमारी कोई चलन देखकर ही कोई ज्ञान छोड़कर चला गया। और जिसकी सेवा करते हैं, जिसका कोर्स कराते हैं, जिसकी पालना हम करते हैं, जिसको मधुबन हम ले जाते हैं, जिसको ब्रह्मा भोजन हम देते हैं, उस आत्मा की विशेष अमृत वेले पालना करनी। स्थूल तो है ही, परंतु अमृत वेले उन आत्माओं को इमर्ज करके उनमें परमात्मा प्रेम की शक्ति भरनी है, उनको ईश्वरीय शक्ति से संपन्न करना है, ताकि और वो मजबूत हो। ये कार्य हमारा कार्य है। इतना शायद हमारा योग बल कम है, इसके लिए वो आत्मा गई है। शायद हमारा चिंतन इतना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन फैलते हैं। हम यदि यज्ञ के प्रति, इस यज्ञ के प्रति, इस सेवा केंद्र के प्रति, इस सेंटर के प्रति निगेटिव भाव रखे अपने प्रति, इनके प्रति, तो ये वाइब्रेशन उस तक नहीं पहुंचेंगे। वो तो अभी भी आया है, कमजोर है। हम तो पक्के हैं, परंतु वो तो कमजोर है। वो तो थोड़ी भी कोई बात से डिस्टर्ब होकर चला जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि सभी भाई बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस परमात्मा घर में भगवान ने जिन्हें निमित्त बनाया है वो सभी आत्माएं जो यहां रहती है, ये वही देवियां हैं, ये भूलना मत, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है सभी भाइयों के लिए, किसी भी बहन के प्रति अपनी दृष्टि वैसी ही रखना जैसी मंदिरों के देवियों के प्रति होती है। सोचो यदि कोई पुरुष मंदिर में जा रहा है किसी देवी की और उसके मन में विकार की भावना उत्पन्न हो जाए तो क्या हो जाए, उसे स्वयं ही आत्मग्लानी होगी। और वो बात यदि वहां के पुजारी और लोगों को पता चल जाए तो क्या करेंगे, वो लोग निकाल देंगे ना मंदिर से। तो सभी भाइयों के लिए ये मत समझना इन्हें कम समझ, ये गलती मत करना कि इनसे हम ज्यादा जानते हैं। अपने जीवन और अपने यौवन को यज्ञ की वेदी पर समर्पित करने वाली अर्पिता समर्पिता और निवेदिता साधारण नहीं है। हो सकता है तुम्हारा ज्ञान उससे ज्यादा हो सकता है तुम्हारा शिक्षण उससे ज्यादा हो सकता है समझ तुम्हारी ज्यादा हो, परंतु सभी माताएं और सभी कन्याएं और सभी कुमारियां हो सकता है ज्यादा पढ़ी लिखी है, परंतु जो यहां है उनको स्वयं भगवान ने चुना है। इसलिए उनके प्रति कोई व्यर्थ संकल्प, कोई निगेटिव संकल्प, कोई निगेटिव वातावरण बनाने की भूल मत करना, इसकी सजा बहुत कड़ी है। उनके साथ कभी कभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, जो संपूर्ण पवित्र है और अनटच्ड है। वासनाओं की टेस्ट लेकर जो बाहर आए हैं और फिर भगवान को पाया है, उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए केवल आदर का नहीं, श्रद्धा और वह पूजनीय भाव ही हमेशा रखना। हो सकता है वो कुछ गलत कह रहे हो, या उनकी समझ कम है, या उनकी मैच्योरिटी कम है, फिर भी भगवान ने निमित्त बनाया है, इस बात को नहीं भूलना। तो बाबा से प्यार अर्थात सबसे पहला मुरली से प्यार, दूसरा मधुबन से प्यार, तीसरा परिवार से प्यार, चौथा यज्ञ से प्यार। तो परमात्मा प्रेम से स्वयं को भरना है और सेवा हम जो भी करें वो कैसी करनी है, अति प्रेम से करनी है, ऐसे समझ के करनी है जैसे हमारे घर का ये काम है, यहाँ की कोई चीज वेस्ट नहीं करनी। और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी आंतरिक जो स्थिति हो और योग की जो अवस्था हो और अशरीरीपन का जो अभ्यास हो, अंदर ही अंदर वो बढ़ता जाए। इसके लिए शक्तिशाली अमृत वेला और फिर नुवाशाम का योग और बीच बीच में भी फिर अशरीरीपन का अभ्यास। हो सकता है घर का वातावरण अनुकूल नहीं है, सभी लोग विरोध में हैं, परंतु देखा गया है कि विपरीत परिस्थिति में ही संपन्न बना जाता है। प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति अगर मिल जाए तो वहां शायद संपन्न बनेंगे ही नहीं। जिस परिस्थिति में अभी है बेस्ट सर्कमस्टांस, जिस स्थान पर हो बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जिन लोगों के साथ हो दीज आर द बेस्ट पीपल। सोचते हो यहाँ ये ठीक नहीं है, वहां वो ठीक नहीं है, ये सेंटर ठीक नहीं है, वो सेंटर ठीक नहीं है, अगर यहाँ एक रावण है वहां 10 है। जो है जैसा है जहां हो दैट इज द बेस्ट प्लेस, बेस्ट टाइम, बेस्ट पर्सन, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। वहां ही रहकर बाबा ने किसी एक मुरली में कहा है ना स्थान बदलेगा ना व्यक्ति बदलेंगे ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। ना स्थान बदलेगा ना व्यक्ति बदलेंगे और ना परिस्थिति बदलेगी। क्या करना है? मुझे करना है। कल की मुरली याद है ना, दो विभाग किए थे बाबा ने। एक तो वो आत्माएं हैं जिन्हें संपूर्णता समीप और स्पष्ट दिखाई देती है, एक दूसरे हैं जिन्हें संपूर्णता स्पष्ट और समीप नहीं दिखाई देती। जो दूसरे हैं वो संशय बुद्धि है, जो पहले है वो निश्चय बुद्धि है। जो पहले है निश्चय बुद्धि वो कहते हैं मुझे करना है, और जो दूसरे नंबर वाले हैं वो क्या कहते हैं, बाप करे या कोई और करे। अलबेलेपन के लाडले बन जाते हैं, अलबेलापन का पर्दा आ जाता है, नाजुक बन जाते हैं, सहनशीलता का कवच धारण करो। इसके लिए कुछ बातें जो टोटल हमें याद रखनी है। सबसे पहला, शक्तिशाली अमृत वेला, जो नहीं करते हैं वो कल से चालू करें, और जो कम शक्तिशाली जिनका होता है वो कल से अधिक शक्तिशाली हो, जिनका पहले ही शक्तिशाली हो वो उसकी अवधि को बढ़ाए, टाइम पीरियड। जो कभी 3 बजे उठते, कभी 3:15, कभी 3:30, टाइम निश्चित नहीं है परंतु उठते जरूर है, उनको अपना टाइम फिक्स करना है, टाइम फिक्स करना है। 3:30 तो 3:30 ही, आदत बनानी, आदत स्वतः ही काम करती है, फिर हमें कुछ नहीं करना होता, एक बार बन गई तो काम करेगा। 1, 2, मुरली, मुरली की 4 बातें चिंतन की जो सुबह सुनाई, उसके बाद कर्मयोग, कर्मयोग भी कैसे, झूमते हुए और नाचते हुए और गाते हुए और क्या सोचते हुए, मैं क्या बना रहा हूँ, भगवान का घर बना रहा हूँ, ये परमात्मा कार्य है। हाँ, यदि कोई लौकिक कार्य भी कर रहे हो, लौकिक पढ़ाई भी कर रहे हो, ऑफिस में जॉब भी कर रहे हो, सोचो ये भी परमात्मा कार्य है। जो लोग आसपास हैं ऑफिस में और सब विरोधी है, पर यही सोचो कि ये भी बाबा के ही बच्चे हैं। ये नहीं सोचना कि ये नॉन बीके, ये शब्द मुझे हमें बहुत खराब लगता है, कहना भी खराब लगता है, नॉन बीके कहते हैं काफी ना, क्या बीके। बाबा ने एक मुरली में कहा है मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं सारे विश्व का बाप हूं। ये गलती में मत रहना कि मैं केवल तुम्हारा बाप, सारे विश्व का बाप हूं। सबको यही समझो कि ये बाबा का बच्चा है। क्या समझना है, चाहे ज्ञान में है या नहीं है, यही समझो कि ये ही बाबा के बच्चे ही है, ये विजन है और वो हो जाएगा। सोचो एक पति है जो अपनी युगल को 20 साल तक तंग करता है, परेशान करता है, मारता है, पीटता है, क्योंकि वो ओम शांति में जाती है, ठीक है, 20 साल एक दिन भी नहीं छोड़ा, इतना विरोध किया, इतना विरोध किया, इतना विरोध किया उसने, पर उसने उसके प्रति शुभ भावनाएं रखी, अच्छी भावनाएं रखी। एक दिन ये पति ज्ञान में आ जाता है, ठीक है, और ज्ञान में आके ज्ञान में चल पड़ता है। तो अब बताओ, जब वो विरोध कर रहा था तब भी तो वो देवकुल की ही आत्मा थी कि नहीं थी, ठीक ही नहीं थी, तब भी देवकुल की ही आत्मा थी। चाहे कितना भी विरोध करे, अपमान करे, निंदा करे, ग्लानी करे, तोड़फोड़ करे, जो करना है करे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि काम का सुख जब वंचित हो जाता है तो हिंसा उत्पन्न होती है पुरुष के हृदय में, और किसी चीज से हिंसा उत्पन्न नहीं होगी, अगर उसकी पत्नी को किसी ने कुछ कहा तो लड़ने झगड़ने को तैयार है वो व्यक्ति, बाकी एकदम शांत है। कभी किसी के साथ झगड़ा करते हुए किसी ने देखा नहीं होगा जीवन भर बचपन से, पर जब शादी होती है और पत्नी को किसी ने कुछ थोड़ा कहा तो झगड़ा हो सकता है। बाकी सारे मित्र भूल जाते हैं वो आने के बाद। सेम ऐसा ही स्त्री का भी, उसका मोह होता है पति में। अब तक कितने लोग आके गए कॉलेज के, परंतु उसकी सहेलियां वो सब गुम। विकार के जो बंधन है बहुत कड़े हैं, उससे आसक्ति मोह सब उत्पन्न होता है। उसकी स्मृतियां इतनी जल्दी से भूलती नहीं है आत्मा को। इसके लिए कौन सी बात कर रहे थे हम? तो हाँ, तो कर्मयोग में ये जो बात है सारे दिन भर की, इसको शक्तिशाली बनाना है। उसके बाद नुमा शाम का योग, जो लोग नहीं करते उनको करना चालू करना। आदत की बात कर रहे थे ना, एक बार आदत बन गई तो स्वतः ही कार्य करती है। जो लोग नहीं करते नुमा शाम का योग, कम से कम साढ़े सात से साढ़े सात, अगर 6.5 से 7.5 तक नहीं होता है तो कम से कम आधा घंटा सब कार्य छोड़ दो और वो काम करो। हाँ, कोई बहुत जरूरी कार्य ऑफिस में है, ट्रेवल में है और कहीं है तो वो दूसरी बात, अदरवाइज करना ही है। और एक कार्य है लिखने का, जो सुबह का, रोज एक टॉपिक लेना और उसपे लिखना। अगर हो सके, अगर बना सके तो अपना एक छोटा संगठन बनाओ जिसमें रोज की मुरली की चर्चा हो। दो बहने, तीन बहने या दो भाई, एक भाई, परंतु अपने आप में एक संगठन हो सके तो कुमारों का अपना एक संगठन हो, क्योंकि संगठन से शक्ति भरती है। सेवाएं तो सब कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं और वो तो होती रहेगी, हम चाहे न चाहे भगवान का कार्य है, वो तो होगा ही, स्वतः ही होगा, स्वतः ही होते रहेगा। कल कहा ना, सब कुछ स्वतः होगा। इंटरनेशनल सेमिनार होंगे, मेले होंगे, प्रदर्शनी होगी, सब कुछ होगा। गाइड बुलाना नहीं पड़ेगा, टेंट लगाना नहीं पड़ेगा, सब होगा। बहने जाकर दीदी दादिया बन के उद्घाटन करके आएगी, कल बोला था, सब होगा। वो तो सहज परिणाम है, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। पुरुषार्थ जरूरी है स्थिति के लिए। तो आज क्या तारीख है? 26 ना, बाबा आ रहे हैं 16 तारीख, ठीक है? तो 16 तारीख तक अपना एक विशेष प्रोग्राम बनाना है 21 दिन का, और उसमें इस क्लास में जो बातें कही, जो अनुभव सुना, जो परमात्मा प्रेम की अनुभूति की, उसको और बढ़ाना है। वास्तव में यहाँ पर हमें थोड़े योग के प्रयोग कराने थे, पर समय नहीं है और बोलने में ज्यादा समय चला गया। फिर भी अभी एक छोटा सा प्रयोग करेंगे और फिर इसकी समाप्ति करेंगे। सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। जो प्रयोग करना है वो क्या करना है पहले बता रहे हैं आपको। सूक्ष्म वतन में जाना बाबा के सामने, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करो जिनको जन्म जन्म हमने दुख दिया है, जिनको हमने सताया है, जिनको हमने पीड़ा पहुंचाई है, अपशब्द बोले हैं, षड्यंत्र किए हैं, गिराया है, शायद हमारी वजह से उनकी मृत्यु भी हुई थी कभी कभी किसी जन्म में। उन सभी आत्माओं को इमर्ज करना और क्या करना, क्या करना? उनसे माफी मांगना। हे आत्माओं, मुझे माफ कर दो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और ये कार्य रोज करना, क्योंकि ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों से अधिक है, ज्यादा है। जो घर वाले आसपास जो है वो सब, कहीं ना कहीं हमने उन्हें दुख दिया, ऐसे ही वो हमें दुख नहीं दे रहे। किसी ना किसी जन्म में हम कभी राजा थे, आक्रमण किया उस देश पर, वो राजा को पराजित किया, सारी प्रजा को उद्ध्वस्त कर दिया, बेघर हो गई सारी प्रजा, मर गए उसमें से, और वही अभी घर में बेटा बेटी सास ससुर कोई ना कोई बनकर आया है। हमारे जो फ्रेंड सर्कल है व्हाट्सएप का और फेसबुक का, उसमें हमारे जन जन के शत्रु बनकर पहुंच गए हैं। किस लिए? हिसाब किताब चुकतू करने। हमारा बॉस, हमारे कलीग, ऑफिस के लोग क्यों आए हैं? ऐसे ही छोड़ देंगे? तुम जमींदार थे और उस किसान की पूरी जमीन हड़प ली थी, परिवार उसका बेघर हो गया, मर गए थे सब, ऐसे ही छोड़ देंगे? द्वापर युग से अब तक जिन जिन आत्माओं को हमने दुख दिया है, पीड़ा पहुंचाई है, उन सभी से क्या करना है? हे आत्माओं, मुझे क्षमा कर दो। ये एक दूसरा करना है। जिन जिन आत्माओं ने हमें सताया है उनको क्या करेंगे? क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। जिन जिन ने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किए, जिस जिस ने हमारे पीछे अपशब्द बोले, निंदा की, नानी की, टांग खींची, विरोध किया, दुखाया, सताया, पीड़ा पहुंचाई, हम बीमार थे, पूछा नहीं, हॉस्पिटल नहीं लेके गए, बुखार था बहुत, परंतु देखा तक नहीं, क्या करेंगे इन आत्माओं को? क्या करेंगे? माफ कर देंगे। क्यों? क्यों माफ करेंगे? क्योंकि हम कौन हैं? हम पूर्वज आत्माएं हैं। माफ क्यों करेंगे हम? हम बड़े हैं। कुछ दिन पहले वरदान था ना, वो छोटे हैं, अनजान हैं, ना समझ है, माफ कर दो। और माफी भी कैसी? बेशर्त, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं। मैं माफी तो मांगता हूं पर बाद में ये करना, ये वाली नहीं, अनकंडीशनल पार्डन। तो सभी अलर्ट होके बैठ गए। अगर कोई चेहरे दिखते हैं तो उनको भी इमर्ज कर लेना, घर वाले ही होंगे ज्यादातर, हमारे आसपास वाले ही है ये सब। ओम शांति। चलो बाबा की याद में भ्रुकुटी के भव्य भाल पर विराजमान मैं तपस्वी आत्मा हूं। देह से अलग अपने फरिश्ते स्वरूप में ही चल रही हूं बाबा के पास। अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख हैं। बाबा की दृष्टि से अनंत शक्तियों की किरणें निकल गई, मुझे आत्मा में समा गए। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम पूर्वज आत्मा हो, इस सृष्टि के आधार स्तंभ हो, इस संसार के लिए उद्धार मूर्त हो, महसूस कर रहे हैं हम सभी बाबा का वरदान हाथ। इस जगत की सारी आत्माएं हमारी ही वंशावली है। देख रहा हूं मेरी आंखों के सामने असंख्य आत्माएं हैं। ये वो आत्माएं हैं जिनको मैंने बहुत सताया है। ये वो आत्माएं हैं जिन्हें मैंने कटु वचन बोले। ये वो आत्माएं हैं जिनके विरुद्ध मैंने जन्म जन्म न मालूम कितने षड्यंत्र रचे। ये वो आत्माएं हैं जो मेरे दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं। ये वो आत्माएं हैं जिनकी मैंने मदद नहीं की। ये वो आत्माएं हैं जो मेरा सहयोग चाहती थी परंतु मैंने सहयोग नहीं दिया। ये आत्माएं देख रहा हूं जल रही है बदले की भावना से। हे आत्माओं मुझे क्षमा करो। अज्ञानवश अपने ही किसी संस्कारवश मैंने तुम्हें पीड़ित किया। मेरे शब्द जो तुम्हारे लिए तीर की भांति थे, मेरा व्यवहार जिस वजह से तुम भगवान को छोड़कर यहां से चले गए। हे आत्माएं हे आत्माओं मुझे क्षमा करो। मुझे माफ करो। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। देख रहा हूं कि धीरे धीरे वो सभी आत्माएं खुश हो रही है। मेरे प्रति अब उनकी भावनाएं बदल रही हैं। उनका चित्त मेरे लिए प्रेम से आपूरित हो रहा है और उनके दिल से मेरे लिए दुआएं निकल रही। महसूस कर रहा हूं जैसे एक बोझ जो मेरे सिर पर था अब उठ गया। अब दूसरी ओर देख रहा हूं वह आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे बहुत सताया, जिन्होंने मेरे हर कार्य में विघ्न डाले, मेरे हर कार्य में जो बाधा बने। उनको देखते ही मन में हलचल हो रही है। ये वो सब लोग हैं जिन्होंने मुझे कभी सहयोग नहीं दिया। मैं बीमार था पर पूछा नहीं, मैं गिर गया था पर उठाया नहीं, मैं रो रहा था पर मेरे आंसू नहीं पहुंचे। मुझे तंग किया, मुझे बहुत सताया, मेरा जीवन दुश्वर कर दिया। मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से मुझे तकलीफ दी। मन में हलचल हो रही इन सभी को देखकर परंतु साथ साथ मुझे याद आ रहा है मैं पूर्वज हूं। परमात्मा स्नेह की अनंत किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं उद्धार मूर्त हूं, मैं जगत पिता हूं, मैं जगत माता हूं। वो सभी आत्माएं पुकार रही है, हे जगत जननी हमें क्षमा करो, हे जगन माता हे पूर्वज आत्माओं हमारी भूलों को माफ करो। अब मैं आत्मा सभी बदले के भाव से मुक्त हो, मेरे हृदय में एक अलौकिक स्नेह उत्पन्न हुआ है और मैं इन सभी को बेशर्त क्षमा करती हूं। अब किसी के भी प्रति मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं, कोई बदले का भाव नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये सभी मेरे मित्र हैं, ये सभी मेरे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव मेरे अंदर जागृत हो रहा है और देख रहा हूं कि वो आत्माएं बहुत खुश हो गई है और अपनी दुआएं अपनी दुआओं की झोली मुझ पर डाल रही है। मैं धन्य हुआ, मैं तृप्त हुआ। अब तीसरी ओर देख रही हूं वो आत्माएं जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, जिन्होंने भक्ति काल में भी मुझे सहयोग दिया और इस ब्राह्मण जीवन में मैं देख रहा हूं वो सभी आत्माओं को जिन्होंने मुझे ईश्वरीय ज्ञान दिया। देख रहा हूं उस आत्मा को और उन आत्माओं को जो मुझे मधुबन ले गई। देख रहा हूं उन आत्माओं को जिन्होंने मुझे भगवान से मिलाया। मेरे सामने वो आत्माएं हैं जो मेरी मददगार बनी। मैं भूखा था और उन्होंने रोटी दी, मैं प्यासा था और उन्होंने अमृत पिलाया। मेरी मदद की, मैं गिरा था और उन्होंने उठाया। देख रहा हूं और अपने ही लौकिक माँ बाप को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। देख रहा हूं उन सभी आत्माओं को जिन्होंने मेरी कभी ना कभी कहीं ना कहीं मदद की और अब उन सबके प्रति मेरे मन में धन्यवाद का भाव उठ रहा है। हे आत्माओं आपका बहुत 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 हार्दिक दिल से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं फरिश्ता एक ऐसी निर्बोज अवस्था को प्राप्त हुई हूं, एक ऐसी डबल लाइट स्थिति को, एक ऐसी निर्भार अवस्था को, मेरे सारे कर्म बंधन छूट गए। ऐसी अवस्था में मैं फरिश्ता पुनः बाबा से दृष्टि लेते हुए धीरे धीरे इस धरती लोक की ओर और फिर इस स्थूल देह में प्रवेश कर रही हूं। आह कैसा अद्भुत आनंद है, मेरा सारा बोझ मिट गया है और मैं कितनी हल्की हो गई। कुछ मिलती है।